ओम शांति। संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या भट्ठी के आज इस प्रातःकालीन सत्र में आदरणीय उषा दीदी जी हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी बहुत दिल के प्यार से खुशियों से दीदी जी का बारंबार हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बार बार स्वागत है, अभिवादन है। आदरणीय उषा दीदी जी मम्मा जगदम्बा सरस्वती के वरदानों से सजे हुए हैं। अपनी युवा अवस्था में आपने हैदराबाद सिकंदराबाद की तरफ भी ईश्वरीय सेवाओं का श्रेष्ठ पार्ट बजाया है। दीदी जी ये सिकंदराबाद से आए हुए भाई बहनों का ग्रुप है। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट से आपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते राजयोग शिविर और ईश्वरीय ज्ञान के साप्ताहिक पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार की नवीनता स्पष्टता आपने बहुत कुशलता पूर्वक ऐड की है और अनुभव होता है कि आपने जो एक सुंदर पुस्तक लिखी है आध्यात्म की ओर, जिसका लाभ विशेष टीचर्स बहने जो सेवा में लगती है उन्हें भी बहुत होता है और जो बाबा के बच्चे ज्ञान की गहराई के चात्रक है, बेसिक बातें जो बहुत क्लियर समझना चाहते हैं, उनको भी आध्यात्म की और पुस्तक बहुत बहुत मदद करती है। और आगे बढ़ते बढ़ते राजयोग तपस्या भट्ठियां ब्राह्मणों के विश्व भर में चलने वाले रिट्रीट, ब्राह्मण परिवार की आध्यात्मिक उन्नति की शक्तिशाली क्लासेस, वो आपके मनन चिंतन की अलौकिकता और दिव्यता है। और आगे चलते तो श्रीमद् भगवत गीता रामायण आदि धर्म ग्रंथों के गहरे अध्ययन एवं मनन चिंतन से सत्य पिता के सत्य ज्ञान को स्पष्ट करते हुए जब आप दुनिया की आत्माओं को गीता सार सुनाते हैं तो लोग भी अब ये समझने लगे हैं, अनुभव करने लगे हैं कि ज्ञान दाता तो निराकार परमात्मा है। तो ये जो बाप को प्रत्यक्ष करने वाली सेवा है उसमें उषा दीदी जी का बहुत अलौकिक पार्ट है। वर्तमान समय आप मधुबन में निवास करते हैं और यहाँ का कोई भी कार्यक्रम हो उषा दीदी जी की उपस्थिति बहुत सभी चाहते हैं, आश रखते दीदी मिलेंगी और हम कुछ नई नई बातें सुनेंगे समझेंगे। तो नवीनता वो आपकी आध्यात्मिक पर्सनालिटी की विशेषता है। तो आज हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, दीदी जी हमें सकाश देने की विधि क्या है, वर्तमान समय की ये सबसे विशेष सेवा है सकाश देने की सेवा, तो वो हम कैसे करें, उसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम सबसे रूढ़िहान करेंगे। हम दीदी जी के वरदानी महावाक्य सुनेंगे। मैं दीदी को निवेदन करती हूँ कि आप अपनी आज की वाणी वरदानों की वर्षा से शुरू करें, लेकिन थोड़ा सा एक मिनट की स्वीकृति चाहती हूँ। एक कन्या है यहाँ। अच्छा, आप बहन आपके स्वागत में कुछ शब्द कहना चाहते हैं। आप सिकंदराबाद से पधारी है और आप दीदी के लिए कुछ शब्दों में स्वागत के बोल बोलेंगी।
ओम शांति। आदरणीय उषा दीदी के लिए हमारी तरफ से ज्ञानपूर्वक अक्षर समाजलि। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान की किरणें अपने अंदर समाते हुए ज्ञान उत्सव के जीवन में ज्ञान उषोदय करने वाली गीता ज्ञान की राजयुक्त सार को अपनी ज्ञान की शक्ति द्वारा सहज विधि से सरल विधि से सभी को समझाने वाली जगदम्बा मम्मा समान ज्ञान कलश को धारण कर 1983 में पूरा भारत की यात्रा कर शिव बाबा की संदेश स्थूल और सूक्ष्म रूप से विश्व में प्रसारित करने वाली ऐसे बाप दादा की लाडली अनमोल रतन उषा दीदी को हमारी ओर से श्रद्धा पूर्वक नमन और ज्ञान सम्मानजलि। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय, समय का गहरा इशारा भी दिया और साथ ही साथ समय की नाजुकता के विषय में भी इशारा देते हुए कहा है कि बच्चे आने वाला समय बहुत बहुत नाजुक होगा। ऐसे नाजुक समय के लिए हम आत्माओं ने तो बाबा से बहुत कुछ पाया है, ज्ञान भी पाया, शक्ति भी पाई, स्नेह प्यार भी पाया, बहुत कुछ पाया है। परंतु ऐसे नाजुक समय में जो आत्माएं आएगी वो इतनी नाजुक होगी कि ईश्वर से अपना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर पाएंगी। और उस समय बाबा कहे वो आप सबके पास आएंगी कि कुछ अंजलि हमें दे दो, उसी में ही वो तृप्ति का अनुभव करेंगे। इसीलिए आगे अब सेवा का स्वरूप भी बदलता जाएगा। अब तक हमने वाचा के माध्यम से बहुत सेवाएं की, लेकिन आगे बाबा कहे मनसा सेवा का विशेष पाठ चलेगा और मनसा के द्वारा तीन चीजें कर सकते हैं एक साथ में। एक तो हम सकाश दे सकते हैं, दूसरा वाइब्रेशन दे सकते हैं और तीसरा वायुमंडल बनाने की विशेष सेवा अब हमें करनी है, जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बार बार ये बात कही कि बच्चे अब सकाश देने की सेवा विशेष रूप में हमें करनी है। ये सकाश कैसे देना चाहिए उसके बारे में कई लोगों के मन में कई प्रश्न उठते हैं। कैसे देना चाहिए, कहां से देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए? तो बाबा ने विशेष छह प्रकार बताए। ये संडे नहीं, पिछले संडे से पहले वाले संडे की बाबा की मुरली थी कि सकाश देने के छह प्रकार के तरीके या छह विधियां। बहुत सुंदर बाबा की गहरी मुरली थी। तो पहली विधि जो बाबा ने बताई कि जिसमें बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप, और फरिश्ते स्वरूप से कैसे सेवा करनी है या सकाश देनी है वो विधि बाबा ने बताई कि बच्चे चक्कर लगाना, अपने फरिश्ते स्वरूप में विश्व में चक्कर लगाना। कभी भक्तों के पास चले जाओ, कभी कहीं आवश्यकता है तो उनको सकाश दो, फरिश्ते स्वरूप से वाइब्रेशंस देना। और ये वाइब्रेशन देने के लिए बाबा ने कहा कि आपका अंतिम समय का संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप ये अंतर्वाहन है जिसमें बैठना है और चक्कर लगाना है। हम सभी को बाबा ने ये बात बताई है कि बच्चे ये आपका पुरुषार्थी स्वरूप है, परंतु हम सबका संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप भी है। और जब हम योग में बैठते हैं तो मन बुद्धि के द्वारा ये पुरुषार्थी स्वरूप से सूक्ष्म शरीर के माध्यम द्वारा हम अव्यक्त वतन में, जहां हमारा संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, उस ड्रेस को धारण करके फिर हमें चक्कर लगाना है, चारों ओर जाना है। किस आत्मा को शक्ति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को शांति चाहिए, उनको वो दो वाइब्रेशंस के द्वारा। तो फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से पहला ये तरीका है सकाश देने का, क्योंकि जब हम अपने संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप में होते हैं तो संपूर्णता के वाइब्रेशन कैसे होंगे, बहुत शुद्ध पवित्र। तो वो वाइब्रेशंस देते जाना है, और जिसको जो चाहिए हमसे आत्माभिमानी स्थिति बनने का अभ्यास करते हुए, हम सब ने अपने अंदर सातों गुणों की शक्ति को जमा किया है। तो जिस आत्मा को जो चाहिए वो हमसे सहज ही वो ले सके, तो वो हमारा स्वरूप ये वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएं और उन आत्माओं को दे। ये पहला तरीका है सकाश देने का, चक्कर लगाना। लेकिन दूसरा तरीका जो बाबा ने बताया कि बाबा ने साकार में अपना अनुभव सुनाया कि जब बाबा के पास समाचार आता कि विश्व के अंदर कोई लहर चल रही हो, मान लो जैसे कहीं भूकंप आया कहीं कोई, तो वहां ऐसी लहर है दुख की, तनाव की, अशांति की लहर है, तो साकार बाबा रात रात जाग करके सकाश देते थे उन आत्माओं को। तो बाबा कहे कि जैसे रेडिएशन देना होता है शुरू के समय में एक स्थान पर, फरिश्ते रूप में तो आप चारों ओर चक्कर लगाएंगे, लेकिन यह दूसरा स्वरूप कि जब विशेष उस लहर के समय योग करते हुए उन आत्माओं को, वहां की आत्माओं को फोकस करते हुए उनको ही देना है, देना है, देना है, ये भावना अंदर जागृत हो, हमें देना है ना। लेकिन उसके लिए बाबा ने विशेष अभ्यास जो बताया कि बच्चे उस समय साक्षी हो जाना, देते समय साक्षी हो जाना। क्यों? क्योंकि बाबा कहे नहीं तो जब आप वहां देंगे तो उसका सेक आपको आ जाएगा, उसका सेक यानी उसका प्रभाव आप पर आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे जब साक्षी हो जाएंगे, दृष्टा बन करके आप सिर्फ देने का ही काम करते हैं, तो उन आत्माओं का सेक दुख दर्द तकलीफ वाला वो आपके ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि आजकल तो जब ऐसी घटना कहीं होती है टेलीविजन पर पूरा नजारा आता है और जब देखते हैं तो उस समय अंदर में रहम जागृत होता है कि इन आत्माओं को देना चाहिए, विशेष योग भी करते हैं कई बार। तो कई जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए बाबा कहे कि उनका सेक नहीं आना चाहिए। वो तभी होगा जब साक्षी दृष्टा की अवस्था का अभ्यास किया होगा। पहले में अंतर वाहन फरिश्ता स्वरूप के लिए, लेकिन दूसरे स्वरूप के लिए साक्षी दृष्टा हो जाना, डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट के साथ साथ वाइब्रेशंस देना। और इतना साक्षी होकर के जब देंगे तो उन आत्माओं को भी पहुंचेगा। फरिश्ता रूप में जब देते हैं तो उन्हें सर्वशक्तिमान बाबा का साक्षात्कार करा सकेंगे, वो भी महसूस करेंगे जैसे कोई फरिश्ते आए, महसूस करेंगे फरिश्ते ने हमें जैसे इतनी ताकत दी, शक्ति दी। लेकिन दूसरे स्वरूप में जब हम साक्षी हो जाते हैं तब उन्हें वो ताकत मिलेगी, वो सामर्थ्य मिलेगी, कहां से मिल रही है मालूम नहीं, है ना। और ये सेवा करने के लिए बाबा ने कहा लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ। लाइट हाउस माइट हाउस क्या करता है? लाइट हाउस हमेशा रास्ता दिखाने का कार्य करता है, भटकी हुई नाव को ठिकाने पर लगाता है। तो इसी तरह जब लाइट माइट हाउस बनकर के उसी जगह पर फोकस करते हैं और वो भटकी हुई आत्माएं अपने आप वो रास्ता अपना ढूंढ लेती है और वो पहुंच जाते हैं बाबा के घर तक, कैसे भी पहुंच जाएंगे। तो ये सेवा जिसको बाबा ने कहा साक्षी होकर के लाइट और माइट देते हुए भटकी हुई आत्मा को बाबा के घर तक पहुंचा देना। पहले में हम चक्कर लगाते हैं, दूसरे में वो पहुंच जाते हैं। ये सकाश देने की विधि है लाइट और माइट। फिर तीसरा तरीका है जब बाबा कहते बच्चे वतन में आ जाओ। वतन में कोई लिमिटेशन नहीं है, बेहद का स्थान है। और इसलिए जिस तरह बाबा वतन से हमारी पालना करता है, बेहद में हर आत्मा की पालना हो जाती है, तो इस तरह से बाबा भी आवाहन कर रहे हैं हमारा कि बच्चे वतन में आ जाओ। और वतन में आकर के बेहद से बेहद में पालना करो। बेहद में पालना करना माना वतन से जब ये विश्व को देखेंगे तो विश्व का गोला नजर आएगा। तो जैसे सूर्य सारे विश्व को रोशनी दे रहा है, ऐसे जब वतन से बाबा के साथ बैठ करके जैसे सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं, सारे विश्व को, तो बेहद में बेहद की सेवा करना, बेहद में स्थित होकर के बेहद की सेवा करना। बेहद में स्थित होना माना बेहद में स्थित होना माना, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना। और जब बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करते हैं तो जैसे हर आत्मा को वो लेना चालू करते हैं, सूर्य एक एक के पास नहीं जा करके देता है, लेकिन हर कोई सूर्य से वो ताकत ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह बेहद के वैराग्य वृत्ति में जब हम हैं, स्थित है, ये बेहद की स्थिति है, तो राग नहीं है वहां पर। वैराग, राग माना अटैचमेंट, वैराग्य माना न्यारा हो जाना। और न्यारा होकर के आप देंगे तो बाबा कहे उन सब आत्माओं तक भी वो सकाश पहुंचेगी, वो अपने आप खींचना चालू कर लेंगे। जैसे सूर्य से रोशनी, गर्माहट, ये सब खींचना चालू करते हैं, ठीक इसी तरह जब हम भी अव्यक्त वतन में बाबा के साथ बैठ करके बेहद की वैराग्य वृत्ति में स्थित होकर के जब वाइब्रेशन देंगे, सकाश देंगे, तो वो अपने आप खींचना चालू करते हैं। ये तीसरा तरीका बाबा ने बताया। तो पहला हमें चक्कर लगाना, दूसरा अपने स्थान पर साकार वतन से उस स्थान तक सकाश देना, और तीसरा वतन में जाकर के सकाश देने का कार्य करना। यहां बैठकर जब कोई स्थान को देना है तो साक्षी दृष्टा, ऊपर से जब करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति से करना है। वो समय को भी नजदीक लाएगा, बेहद की वैराग्य वृत्ति ये समय को भी समीप लाएगा और अनेक आत्माओं को भी उस पेन, उस तकलीफ से मुक्त करने के, राहत देने के, उसको शक्ति प्रदान करेगा। चौथा स्वरूप या चौथा तरीका जिसको बाबा ने बताया सकाश देने का, कि बाबा कहे तुम सभी पूर्वज हो, तो ये कल्प वृक्ष के तने में बैठ जाओ। और तने में जब बैठ जाएंगे तो तने से एक एक ताल तालियों तक, पत्ते तक अपनी सकाश देना है, पोषण देना है। सकाश देना माना पोषण देना। तो चाहे यहां से दो, लेकिन यहां से देने के बजाय ये कल्प वृक्ष परमधाम में उल्टा है। जब उल्टा है तो परमधाम में जाना ज्यादा सहज है। तो अव्यक्त वतन नहीं, लेकिन वहां से भी ऊपर चले जाओ परमधाम में, जहां ये उल्टा वृक्ष है, बीज बाबा के साथ बैठो। और जब बीज बाबा के साथ बैठेंगे तो बाबा की शक्ति हमारे से ट्रांसेंड होती है और नीचे तने डाल डालियों तक वो पोषण उनका जा रहा है, एनर्जी जा रही है। ये विजुलाइज करना, और इस तरह से एक एक उसका जो रस है, जैसे वो नहीं दिखाते हैं कि रस पत्ते तक जा रहा है, तो उल्टे वृक्ष में बैठना आसान हो जाएगा। तने में नीचे कल्प वृक्ष को विजुअलाइज करेंगे तो बाबा कहते हैं ये तना सड़ गया है, नीचे वृक्ष में बैठना मुश्किल होगा, डिस्टरबेंस बहुत होगी। इसीलिए परमधाम में यही वृक्ष उल्टा है, लाइट का वृक्ष है, वहां बीज रूप बाबा है, तो बीज रूप बाबा के साथ बैठने से बहुत सुंदर अनुभव होगा। उसमें मेरे अंदर की जो इम्प्योरिटीज है वो भी साफ हो रही है, क्योंकि तभी बाबा मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाता है, तो पहले बाबा की सकाश मुझसे, फिर तना तना से टाल ताली, टाल ताली से फिर एकदम पत्ते तक पहुंचती है। तो उसमें मेरा प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है, मुझे अलग समय निकाल के पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन एक में दो काम हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहे तने में बैठ जाओ, और ये उल्टे वृक्ष के तने में अगर बैठ गए तो जो बाबा से हम चाहे सर्व संबंधों का रस ले रहे हैं, सर्व शक्तियों का रस ले रहे हैं, तो वो एनर्जी एक एक पत्ते तक पहुंचती है, वो जैसे फैल जाती है हमारे द्वारा, जैसे सारे वृक्ष को फैल गई है। तो ऊपर से क्या होता है देने में, हर आत्मा को भी जब हम विजुअलाइज करते तो उनके अनादि स्वरूप में विजुअलाइज करते, तो अनादि स्वरूप में विजुअलाइज करते हुए देने में आनंद आता है, क्योंकि वो बाप समान स्थिति है, बाबा के साथ बैठे हैं, बीज रूप बाबा के साथ मैं भी बीज बैठी हूं, और हर आत्मा भी अपने अनादि स्वरूप में है, उसमें विजुलाइज करना, तो उन तक वो पहुंचाना बहुत सुंदर अनुभव होगा। जैसे कि बाबा से सर्व संबंधों का सुख का रस लिया, और वो सुख का रस हम ट्रांसेंड कर रहे हैं, बाबा सर्व शक्तियों का छत्र छाया है, तो छत्र छाया के नीचे बैठ करके मेरे अंदर आ रही, मेरे द्वारा सारे वृक्ष को जा रही है, तो उसमें मेरा भी बहुत क्लेंजिंग प्रोसेस होता है। साथ ही साथ लेना और देना बहुत खुशी का अनुभव होता है, एक तरफ ले भी रहे एक तरफ दे भी रहे हैं। जैसे कि मैं आत्मा एकदम फ्लॉलेस डायमंड होती जा रही हूं, मेरे में अगर कहीं थोड़े बहुत फ्लॉ भी है तो उस रस जो मेरे अंदर आ रहा है, सर्वशक्तियों का रस जो बाबा से मैं खींच करके सारे वृक्ष को के तरफ उसको प्रवाहित होने देती हूं, तो जैसे मेरे अंदर के फ्लॉ भी समाप्त हो रहे हैं, तो डबल पुरुषार्थ हो जाता है। और डबल पुरुषार्थ का डबल फायदा, जितना हम दूसरों को देने का कार्य कर रहे हैं उतना मेरा भी जमा हो रहा है, मेरा भी शुद्धिकरण एकदम हो रहा है, मैं आत्मा भी एकदम पारस जैसे बनती जा रही, क्योंकि पारस के संग में बैठी हूं, तो मैं भी पारस मणि बनती जा रही हूं। बहुत सुंदर अनुभव, उस तने में जब बैठते हैं, वो लाइट के वृक्ष में के तने में जब हम बैठते हैं बीज रूप बाबा के संग, तो बाबा भी बीज लाइट है, मैं भी एकदम लाइट, लेकिन इतना पावरफुल, क्योंकि सारे वृक्ष की एसेंस मुझ में है, और ज्ञान की क्या रस कहो, सुख का रस कहो, वो सारा रस हम एक एक पत्ते तक जाने देते, वो पोषण दे रहे हैं ना। तो ये है चौथा प्रकार का तरीका, चौथा तरीका सकाश देने का। पांचवा तरीका है जो बाबा ने कहा कि जब ज्ञान का मनन चिंतन करने लगते हैं, तो ज्ञान के मनन चिंतन से हमारे अंदर शुभ संकल्प क्रिएट होते हैं, और शुभ संकल्प जितने क्रिएट होते हैं तो वो शुभ भावना और शुभ कामना में परिवर्तन होने लगते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के रूप में परिवर्तन होने लगते हैं और वो ऊर्जा शुभ भावना शुभ कामना की वो जैसे चारों ओर प्रवाहित होने दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए बाबा ने अभ्यास बताया कि बच्चे एकांतवासी बनना पड़ेगा। जितना एकांतवासी होंगे और खजानों की इकोनॉमी करेंगे, एकांतवासी और इकोनॉमी, तब वो दूर दूर तक जाएगा। क्योंकि एकांत का प्रवाह सन्नाटे की तरह बहुत दूर तक फैलता है। इसलिए जितना एकांतवासी और खजाने की इकोनॉमी, कौन से खजाने की विशेष इकोनॉमी करने के लिए कही बाबा ने, हाँ विशेष जो बाबा ने कहा कि आपकी एनर्जी ज्यादातर ड्रेन होती है वाचा से और व्यर्थ संकल्पों से, तो ये दो द्वार जो है उसको बंद करना पड़ेगा, तब दूर दूर तक जाएगा। तो एक तो मुख का मौन और दूसरा मन का मौन। जितना मौन के अभ्यासी होंगे, उसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि चलो रोज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन छुट्टी तो होती है, छुट्टी के दिन करो। अगर छुट्टी के दिन भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वहां तक बाबा ने सहजता प्रदान कर दी कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय इतना मुख का और मन का मौन हो जाए, इतने हम अभ्यासी तीन मिनट के अंदर एकदम मौन की स्थिति में, डीप एकदम मौन में चले जाए, तो जितना मन का मौन होगा उतना ये वाइब्रेशंस को आप दूर दूर तक वायुमंडल के अंदर प्रवाहित करें। और उन आत्माओं को भी महसूस होगा कि जैसे कहीं से जैसे एक लहर आ रही है। जैसे कभी कभी आप देखो कि भाई बहुत गर्मी है और एक कहीं से ठंडी हवा शीतल लहर एकदम आ जाती, तो लोग वहां जाके खड़े रह जाएंगे। तो इस तरह से जब ये मौन रखेंगे तो एक ऐसी लहर फैलेगी आपके द्वारा कि वो आत्माएं स्वतः जैसे उस मैग्नेट की तरफ खींचते हुए कि यहां खड़े हो जाए, तो झुंड जैसे वहां पहुंच जाएगा। तो ये शुभ भावना शुभ कामना के लिए इतना स्टॉक अंदर में जमा होना चाहिए, क्योंकि तब ये प्रवाहित कर सकेंगे। अगर मैं खुद ही खाली हूं, इसलिए कहा के मुख का मौन और मन का मौन, ये मौन ही हमारे अंदर ये शक्तियों का स्टॉक जमा करेगा। और जब जमा होगा तो आप देते जाएंगे और जब देने लगेंगे तो वो आत्माएं महसूस करेगी कि कहीं से हमें मिल रहा है। टेलीपैथिक कनेक्शन के माध्यम से वो महसूस करेंगी और अपने आप में भी जैसे प्राप्त करने का उसको अनुभव करेंगे। ये पांचवा तरीका है। छठा तरीका बाबा ने बताया कि साइंस दान वालों को, साइंस दान वाले हर रोज मेहनत करते हैं कि सुख के साधन मनुष्य को बनाकर दे, सुख के साधन बना करके देने के लिए सोचते रहते हैं, उनकी बुद्धि चलती रहती है। लेकिन कोई भी साधन बनाते हैं तो सुख के साथ पीछे दुख आता ही है कि नहीं? आज मोबाइल बना के दिया ताकि हर एक व्यक्ति कम्युनिकेट कर सके, साधारण से साधारण मनुष्य भी कम्युनिकेट कर सके। लेकिन आज मोबाइल के रेडिएशन से कितनी तकलीफ हो रही है। तो सुख के साधन बनाकर देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हर साधन किसी न किसी रूप में मनुष्य को दुख भी दे देता है सुख के साथ। और ये क्यों होता है, उसकी गुह्य गति बाबा ने बताई, क्योंकि वो स्वयं सुख स्वरूप नहीं है, उनके पास एवरलास्टिंग सुख नहीं है, सदाकाल का सुख नहीं है, वो खुद फ्लक्चुएट हो रहे हैं सुख की स्थिति, दुख की स्थिति, सुख की। तो इसलिए उनके साधन जो बन रहे हैं उस पर भी उनका प्रभाव पड़ रहा है, वो कभी तो सुख देगा तो कभी वही दुख का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए मनुष्य को भी वो अपनी स्थिति के कारण उनके अंदर भी दुख को जन्म दे देते हैं, दुख का अनुभव कराने के निमित्त बन जाते हैं। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही। इसीलिए बाबा ने कहा आप सुखदाता के बच्चे सुखदेव हो, आपको फ्लक्चुएट नहीं होना है। वो जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन आप सुखदाता के बच्चे उन साइंस दानों को, मनुष्य को नहीं साइंस दानों को क्या देंगे, कैसे सकाश देंगे? तो साइंस के अगेंस्ट में हमेशा बाबा कहते साइलेंस पावर। तो अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति हो जो बाबा कहे आप टावर ऑफ साइलेंस बन जाओ, टावर बन जाओ, लाइट हाउस भी नहीं। टावर क्या होता है, लाइट हाउस से कई गुना ऊंचा होता है, और वहां से जब आप अपनी साइलेंस पावर की सकाश उनको देंगे तो उनकी बुद्धि परिवर्तन होने लगेगी, और जब उनकी बुद्धि परिवर्तन होने लगेगी तब वो सतयुगी दुनिया के लिए सदा सुख के साधन बनाने के लिए शुरू करेंगे। इसलिए उनको भी सकाश देने वाले तो हम ही हैं। तो इसलिए बाबा कहे टावर ऑफ साइलेंस, उस समय मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, शांति की शक्ति से भरपूर, ओवरफ्लोइंग जिसको कहा जाए। ऐसा टावर जब बन जाएंगे आप, और साइंस दान वालों को भी वो शांति देंगे आप, वो सकाश उनको मिलेगी, तो उनकी जो बुद्धि फ्लक्चुएट हो रही है वो शांत होने लगेगी, धैर्यता उनको अंदर आने लगेगी, और उसके बाद जो वो साधन बनाएंगे, वो सकाश के कारण जो साधन बनाएंगे, वही सतयुग के अंदर सुख के साधन, सदाकाल सुख देने, वो फिर दुख देने वाले नहीं बनेंगे, या दुख नहीं लाएंगे, या हर साधन जो आज सुख दे रहा है कल दुख दे रहा है, वो साधन फिर दुख देने का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म गति से ऑपरेटेड है। सूक्ष्म गति की सकाश उनको ऐसी मिली हुई है, और वो सूक्ष्म गति उनकी बुद्धियों को भी चेंज करेगी, प्यूरिफाई करेगी। तो प्यूरिफाइड फॉर्म में जो वो बनाएंगे वो इतना प्योर होगा कि वो खाली सदाकाल का सुख देने वाला ही बन जाएगा, वो दुख का कारण नहीं बनेगा। लेकिन वहां पर आप दुख हरता और सुख करता, इसलिए बाबा कहे सुखदेव बन जाओ, सुख दाता के बच्चे हो आप। अब उन आत्माओं के प्रति भी ये ख्याल होना चाहिए कि उनको भी हम ऐसी शक्ति दे, साइलेंस की ऊर्जा दे, साइलेंस का पावर भरे उसके अंदर, जिससे उनकी बुद्धि का प्यूरिफिकेशन हो, बुद्धि शांत होकर के जब एकाग्र होकर के वो सोचेंगे, तब उनकी जो ये कामना है कि हम ऐसा सुख का साधन दे जो कोई भी व्यक्ति दुखी न हो, तब वो लास्ट इन्वेंशन उनकी ये रहेगी जो फिर सतयुग के अंदर हमें काम आएगी, क्योंकि वो सब सूक्ष्म गति से ऑपरेटेड होंगे, मनसा से ऑपरेटेड होंगे। बहुत पावरफुल लास्ट में ये बात बाबा ने कही उस मुरली के अंदर कि बच्चे अब ऐसी विधि से उन साइंस दान वालों को सकाश देना है। तो संकल्पों से जब हम उसके मन को शांत करेंगे तो वहां पर जो साधन होगा वो संकल्प की शक्ति से ऑपरेटेड होगा, इसलिए वो दुख का कारण नहीं बन सकती है। टेलीपैथिक ऑपरेशनल होगा, इतनी सूक्ष्म गति से वो साधन भी ऑपरेशन ऑपरेटेड होंगे, तो फिर दुख का सवाल ही नहीं है। तो ये छह विधि है जो बाबा ने बताई। पहले फरिश्ता स्वरूप से हमें चक्कर लगाना है भक्तों के पास, जो आत्माएं हैं उनके पास, उनको चाहे नजदीक वाले हो दूर वाले हो जो भी हो, है ना। दूसरे में लाइट हाउस माइट हाउस बन करके देना है। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, साक्षी दृष्टा की स्थिति बहुत आवश्यक है। तीसरे में अव्यक्त वतन में चले जाओ, और अव्यक्त वतन में जाकर वहां बेहद की सेवा, बेहद की भावना, बेहद की वैराग की वृत्ति से, बेहद का भाव सारे विश्व के प्रति, ऐसा रहम दिल का भाव हो जो उनको बस देना है देना है देना है इन सबको, है ना। चौथा फिर वतन से भी आगे परम धाम में उल्टे वृक्ष में तने में जाकर के बैठ जाओ बीज के साथ, और बीज रूप बाबा के साथ जब बैठ जाते हैं तो उसमें हमारा अपना पुरुषार्थ भी होता है, तो हमारा देने का कार्य भी चलता है। जो रस बाबा से हम ले रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन शुद्ध स्वरूप में दे रहे हैं, वो जैसे प्यूरिफाइड होकर के जा रहा है तो वो एक एक पत्ते तक पहुंचता है। और फिर पांचवा है, जब ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, शुभ संकल्पों में रमण करते हुए, शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति से। लेकिन उसके लिए जो बाबा ने कहा, एकांतवासी और खजानों की इकोनॉमी, क्योंकि तब दूर दूर तक जाएगा। और खजानों की इकोनॉमी के लिए बाबा ने कहा, मुख का मौन मन का मौन रखो। और छठा फिर विशेष साइंस दान वालों को लक्ष्य में रखते हुए बाबा ने कहा, आप टावर ऑफ साइलेंस बन जाओ। और जब टावर ऑफ, क्योंकि वो तो नहीं दे सकेंगे सदा सुख का अपने आप में, क्योंकि वो सुख और दुख के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप जब सुखदाता के बच्चे सुखदेव बन जाएंगे और उस साइंस दान वाले की बुद्धि को शांत करने के लिए आप टावर ऑफ साइलेंस बन जाओ, और टावर ऑफ साइलेंस बन करके उनको वो साइलेंस की शक्ति ऐसी दे जो उनकी बुद्धि इतनी शांत हो जाए, और जब शांत बुद्धि होती है तो क्रिएटिव बन जाती है, और फिर सुखदाता के बच्चे बन करके आप उनको सुख भी तू जो क्रिएशन निकलेगी वो सतयुग में काम आ जाएंगे। तो इनडायरेक्ट में हम ही क्या हो जाएंगे, प्रेरक, साइंस दान वालों के भी प्रेरक। भले हम जाकर के हमें विमान बनाना है, ये बनाना हमें नहीं बनाना है, लेकिन हम उनको अभी से तैयार करें तब वो मिनट मोटर की तरफ बनाना शुरू कर देंगे। तो ये बाबा की मुरली चाहे तो दोबारा रिवाइज कर लेना। बहुत सुंदर बाबा ने ये 6 विधियां जो बताई है, इतना सुंदर अंदर में लगा कि कई बार कंफ्यूजन होता है कि सकाश कैसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये प्रश्न मन के अंदर आता रहता है, कई लोग पूछते रहते हैं। तो ये 6 विधि है कैसे देने की है ना। हर रोज बाबा कैसे संगठित, अलग अलग करते हैं हले, लेकिन अगर संगठित रूप में करें, जैसे भाई जब वर्ल्ड मेडिटेशन डे होता है, इंटरनेशनल डे, उस दिन अगर एक ही संकल्प के आज सब तने में बैठ के योग करेंगे, तो आप सोचो कि संगठित रूप में सारे लोग तने में बीज रूप बाबा के साथ बीज बन करके बैठ करके, तो उसका जो इफेक्ट होगा संगठित रूप का योग का, वो एक ही स्टेज का, कितना दूर दूर तक जाएगा। और ये बाबा भी हम सबसे चाहते हैं कि एक साथ में एक ही संकल्प लेकर के उस स्टेज में बैठ जाओ। फरिश्ता तो फिर सारे फरिश्ते, लाइट हाउस तो सारे लाइट हाउस, साइलेंस का टावर तो सब साइलेंस का टावर। तने में बैठना है, मनस सब तने में बैठ जाओ। इस तरह से जब हम करने लगेंगे तो उसका इम्पैक्ट, जिसको कहें मिरेकल्स क्रिएट करना शुरू करेगा। जो बाबा कहे अंतिम सेवा यही है, अभी संगठित रूप में ब्राह्मणों का संगठन और वो शुद्ध स्वरूप का संगठन इतना पावरफुल होगा जो बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए आप सभी बाबा के इस तपस्या भूमि में आए हैं, साकार बाबा की कर्म भूमि में आए हैं। इस तरह के अगर अनुभव करो नमः शाम के समय या अमृत वेला, एक ही संकल्प में बैठ करके एक साथ में उस रूप की कमेंट्री के साथ अगर अनुभव करेंगे, कमेंट्री की भी कभी कभी जरूरत नहीं होती, फील करना है, उसके साथ साथ फील करने की बात होती है। और जब ऐसे फील करना शुरू करेंगे और देना शुरू करेंगे, तो फिर देखो कितना सुंदर अनुभव आप स्वयं के लिए भी क्रिएट करते हैं, एक मैजिकल इम्पैक्ट आप देखेंगे, एक लगेगा कि मिरेकल्स होने लगे हैं। जो कहीं एक आत्मा, सिद्ध आत्मा, एक धर्म पिता की आत्मा ऐसे मिरेकल कर सकती थी, लेकिन इतनी पवित्र आत्माओं की शक्ति कैसा मिरेकल कर सकेंगी, आप सोचो। तो ये अभी समय की नाजुकता के हिसाब से अब ये सेवा समझते हुए हम सभी को करनी है। ये बाबा अभी हम बच्चों को जिम्मेवारी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने यही कहा उस मुरली के अंदर कि अगर लौकिक वालों को देना है तो लौकिक समझ करके नहीं दो, साक्षी हो करके न्यारा हो जाओ, ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये मेरे संबंधी है इसलिए देना है, ये नहीं है ना। और जब आप साक्षी होकर के लाइट हाउस माइट हाउस बन करके देना चालू करेंगे चारों ओर, तो नजदीक वालों को तो मिलना ही है, क्योंकि वहां से ही गुजर करके जाने हैं, तो इसलिए उनको अपने आप मिल जाती है। बाबा ने बहुत सुंदर एक लाइन, एक ही लाइन है उसमें, कि लौकिक वालों को या अपना जो है उसको समझते हुए नहीं देना है, लेकिन जब आप दूर की आत्माओं तक पहुंचाएंगे तो उनको तो पहुंचना ही है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति जी। कितना देर कराना है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास। अच्छा ठीक है, तभी हम सब, मैं खाली आपको संकल्प देती जाऊंगी कि अब सब मिलकर के इस स्थिति में बैठो, इस स्थिति में फील करो। मैं जानती हूं कि जरा हैवी डोज है और समय भी हैवी है, इसीलिए और हैवी ब्रेकफास्ट करके बैठे होंगे, तो हैवीनेस ना आ जाए, क्योंकि हैवीनेस यहां आ गई तो क्या होगा। जो आप अनुभव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, सभी पीछे वाले तैयार है ना, हैवी तो नहीं है कोई भी। अच्छा चलिए, सर्वप्रथम स्वयं को ये देह, देह की दुनिया, देह के पदार्थों से न्यारा करते जाए। अरंतर चक्षु से स्वयं को देखे, मैं आत्मा ज्योति पुंज प्रकाश पुंज, देह की दुनिया से न्यारा होते हुए सूक्ष्म स्वरूप द्वारा अपने अव्यक्त वतन से संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ते ड्रेस को धारण करती हूं, और एकदम लाइटनेस हल्कापन महसूस करूं। यही अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस, ये स्वरूप मेरा अंतर्वाहन है, और इस वाहन के द्वारा मैं चक्कर लगा रही हूं चारों ओर, मंदिरों में अनेक भक्त आत्माओं, जो भटक रही है, उन्हें शक्ति देना है, सकाश द्वारा शक्ति प्रदान करना है। धीरे धीरे महसूस करो, मैं आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस हूं, लाइट और माइट की किरणें दे रही हूं, साक्षी दृष्टा हूं, भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखा रही हूं। धीरे धीरे वापस अपने अव्यक्त वतन पहुंच जाती। और अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के संग, अव्यक्त स्वरूप से सारे संसार के लोग को सकाश दे रही। बाबा के संग बैठना कितना सुखद अनुभव है। धीरे धीरे अव्यक्त ड्रेस को भी छोड़ते हुए मैं आत्मा प्रकाश पुंज परम धाम में जाती हूँ। बीज बाबा के संग मैं आत्मा भी बीज स्वरूप। और उल्टे वृक्ष के लाइट के कल्प वृक्ष को देख रही, उस लाइट के कल्प वृक्ष को प्रकाश दे। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणों का रस लेते हुए तने से ताल तालियों और पत्तों तक उस पोषण को प्रवाहित होने देते हैं। सर्व संबंधों के सुख का रस, हर पत्ते पत्ते तक प्रवाहित होने देती हूँ। धीरे धीरे साकार वतन में ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए स्वयं में शुभ संकल्प शुभ संकल्पों की शक्ति को जमा कर रही हूं। और शक्ति को शुभ भावना शुभकामना के रूप में फैला रही हूं। मन का मौन मुख का मौन करते हुए धीरे धीरे अंत में साइंस दान को मैं टावर ऑफ साइलेंस बन जाती हूं। सुखदाता बाप के बच्चे मैं सुखदेव हूं।
पार्वती जी का हम सभी बहुत बहुत दिल की दुआओं से थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शांति। दीदी जी का हम सभी बहुत बहुत दिल की दुआओं से थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।